Good evening and welcome to the new edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Well, I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
धन्यवाद निशित. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार आप तक लाते हैं और उन पर चर्चा भी करते हैं. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक श्री ए के भट्टाचार्य. आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में.
नमस्कार, धन्यवाद.
और अब शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से, जिन्हें आप तक ला रहे हैं निशित कुमार.
द हेडलाइंस: होलसेल इन्फ्लेशन डिक्लाइंस टू 2.04% इन जुलाई फ्रॉम अ 16-month हाई ऑफ 3.36% इन जून. Indian benchmark ends marginally higher. Sensex adds 149 points. Nifty gains 0.02%. And after report shows US crude and gasoline inventories fell, Brent crude was 0.43% higher at $81.04 per barrel.
खुदरा मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर जून के 3.36% के 16 महीने के उच्चतम स्तर से कम होकर जुलाई में 2.04% तक गिर गई. भारतीय शेयर बाजार में मामूली बढ़त, सेंसेक्स 149 अंक बढ़ा, निफ्टी में 0.02% की वृद्धि हुई दर्ज. और अमेरिका में कच्चे तेल और गैसोलीन का भंडार कम होने की रिपोर्ट आने के बाद ब्रेंट क्रूड का मूल्य 0.43% की बढ़त से $81.04 प्रति बैरल पर जा पहुंचा.
Today we begin this session with the news on inflation, which has come in after rising for 4 consecutive months. Wholesale inflation declined to 2.04% in July, according to the latest government data released on Wednesday. India's wholesale inflation, as measured by the Wholesale Price Index WPI, cooled to a 3-month low of 2.04% in July from a 16-month high of 3.36% in June, primarily due to a sharp reduction in food prices. The annual WPI inflation rate was 2.04% in July 2024, down from 3.36% in June 2024, says the ministry in its release. And inflation in food prices stood at 3.45% during the month, compared to 10.8% in June. In July 2024, the annual inflation rate for primary articles was 3.08%, down from 8.8% in June. The Reserve Bank of India, RBI, which primarily considers retail inflation for its monetary policy decisions, maintained the benchmark interest rate, that's the repo rate, at 6.5% for the 9th consecutive time in its August review. This decline in the WPI inflation aligns with the retail inflation data for July. Retail inflation dropped to a 59-month low of 3.54% in July, primarily due to a high base effect, according to data released by the National Statistical Office, NSO, on Monday. And moving on to the next story, that's on exports. India's merchandise imports rose 7.4% year-on-year to $57.48 billion in July this year, as compared to $53.49 billion in July last year. The services front, the export of services are estimated to be at $28.4 billion in July this year, up over 8% year-on-year basis, as against $26.2 billion in the same month last year. And services imports stood at $14.5 billion in July, compared to $13.7 billion in July 2023. And major drivers of merchandise export growths in July 2024 include electronic goods, engineering goods, drugs and pharmaceuticals, meat, dairy and poultry products, and RMG of all textiles. The electronic goods exports increased by 37.3%, engineering goods exports increased by 3.6%, drugs and pharmaceuticals exports increased by 8.3%, the meat and dairy and poultry products exports increased by 56.1%, and textiles exports increased by 11.8%.
आप क्या कहेंगे मिस्टर भट्टाचार्य, जो आज ये फिगर्स आए हैं, अगर हम पहले इन्फ्लेशन की बात करें, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो जिस लेवल पे आ गया है और हमने देखा है कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन में भी गिरावट आई है, आपको लगता है दे आर मूविंग इन सिंक, और ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं इकोनॉमी के बारे में?
देखिए, जो होलसेल प्राइस जो है वो तो ये दर्शा रहा है कि जो प्रोड्यूसर प्राइस जो है, जो दाम हम और आप वो उसमें इम्पैक्ट नहीं होते, पर प्रोड्यूसर का जो प्राइस है उसमें ये बहुत दिन से ही ये प्राइस एक मॉडरेट लेवल से चल रहा था, और इसको स्टेबिलिटी इस लेवल में लाना ये अच्छी बात है। फूड में भी जो होलसेल फूड प्राइस है वो भी स्टेबल है, पर जो देखना है हमें वो रिटेल प्राइस है, क्योंकि रिटेल प्राइस हम और आपको इम्पैक्ट करता है राइटली, और उसको इकोनॉमी की डिमांड को भी इम्पैक्ट करता है। होलसेल प्राइस में अगर 2.06% जो है उसका मतलब यही है कि जो प्रोड्यूसर जो है, जो कंपनी जो है, उनकी मार्जिन बरकरार है, इम्पैक्ट है, क्योंकि अगर होलसेल प्राइस कम होगा इसका मतलब उनको जो सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा है तो उनका जो मार्जिन है वो बरकरार रहता है। तो ये होलसेल प्राइस को कंट्रोल में लाना, ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर जो है, उसके लिए एक अच्छी खबर है, पर जो इकोनॉमी की जो बात आपने जो जिक्र की उसके लिए हमें दोनों प्राइस को देखना है, और दोनों प्राइस में हमें रिटेल प्राइस तो ओवरऑल जो जुलाई का नंबर जो आया था वो फर्स्ट टाइम बहुत महीने बाद
4%
के नीचे आया था, पर उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो आपका जो किस लिए ये रिटेल इन्फ्लेशन अभी भी 3.65 में अटका हुआ है, उसका कारण यही है कि वेजिटेबल प्राइस, अगर वेजिटेबल प्राइस को देखेंगे और उसमें भी जो दो आइटम्स जो हैं वो अनियंस और पोटैटो, इसका मतलब प्याज और आलू, टमाटर भी नहीं, तो हम लोग कहते हैं कि टॉप कमोडिटीज जो है वो उनको देखना चाहिए, इसीलिए जो रिटेल प्राइस अभी भी 4% के करीब जा रहा है। मुझे ये लग रहा है कि जो होलसेल प्राइस का जो इम्पैक्ट प्रोड्यूसर्स लेवल में अच्छा होगा, इसका एक डिलेड इम्पैक्ट मेरे ख्याल से एक रिटेल प्राइस में भी आने की उम्मीद कर सकते हैं, और विंटर आने वाले हैं, बरसात अच्छी हुई है, रिजर्वायर लेवल पानी अच्छा है, मॉनसून का स्प्रेड भी अब की बार अच्छा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो ऑफकोर्स अभी भी बहुत संभले हुए है, वो अपने मॉनेटरी पॉलिसी का को उनको नई जो अक्टूबर में जो बैठेगी जो उसमें देखेंगे, पर इंटरेस्ट रेट को घटाना कि आशा इस वक्त हमें करना नहीं चाहिए, इंटरेस्ट रेट को घटाना होगा तो मेरे ख्याल से यही टेंडेंसी, यही ट्रेंड को और भी प्राइस को मेंटेन करना पड़ेगा, और मे बी अगले साल 2025
सस्टेन रहेगा तभी वो ये लेंगे।
और उसका और एक इंटरेस्ट रेट का और एक आर्गुमेंट ये है कि अगर आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने आप ही कह रही है कि इस साल 7.2% रहेगा, तो आप इंटरेस्ट रेट को मतलब ग्रोथ उतना बड़ा चैलेंज नहीं है इस वक्त, इन्फ्लेशन चैलेंज है, और अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो 2-3 इम्पोर्टेंट इलेक्शंस भी आने वाले हैं, उस समय अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि जो वोटिंग पैटर्न है वो इन्फ्लेशन से इम्पैक्टेड होती है, तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन के ऊपर जो कड़ी नजर सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के से आई है वो कड़ी नजर चलती आएगी, और इंटरेस्ट रेट का घटाना वो आशा हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते।
एकेबी, यू राइटली मेंशन दैट द रिटेल इन्फ्लेशन हैज टू बी सीन इन द कमिंग डेज हाउ इट कम्स। ऑफ कोर्स WPI हैज कम डाउन, बट 2.04 कमिंग डाउन फ्रॉम 3.36 स्टिल वेरी सिग्निफिकेंट आई वुड से, एंड एज यू मेंशन अर्लियर दैट विद द वाइड स्प्रेड मॉनसून काइंड ऑफ कॉपियस रेनफॉल दैट वी आर सीइंग, वी आर हैविंग दीज डेज, मोस्टली वी विल सी the trend declining more and more in the coming days. Your say on that?
You know, you have to recognize that wholesale prices are always are something that are paid. These prices are impacting the producers. Now, yeah. when the producers are paying a lower unit price for various items, whether it is food or manufactured items, so what happens is that their ability to control costs goes up. Right. But it also indicates that the demand for raw materials and components are not very high. If the raw material demand or the component demands are more, which means the producers are going out and buying larger goods,
mm-hmm.
the prices tend to go up. Their prices going down is also an indication that the manufacturing companies are probably not going in for a larger number of items and goods to buy mm-hmm. and produce and sell them in the market. So there is a demand challenge is getting reflected in these soft WPI inflation numbers also.
That is, WPI for a long time negative territory mein tha. So, us daur se to hum nikal aaye hain.
Oh, of course. There is no doubt about it. If you compare it, we have come out of that. But what I am saying is going forward. Mm-hmm. That this level of WPI is also indicative that the demand is very soft.
So, kya level aapko lagta hai optimum hoga WPI ka?
Dekhiye, jo WPI ka jo isme ek bahut badi important cheez aapko nazar rakhni padegi, iske andar services nahi hota hai. To aur hamari economy mein services almost 60% hai. तो 60% की जो प्राइस की जो होलसेल प्राइस की जो इम्पैक्ट हुई इस डब्ल्यूपीआई में वो कैप्चर नहीं होती है तो ये सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कंपोनेंट्स एग्रीकल्चरल गुड्स फूड आइटम्स ये इसमें आती है तो मुझे लगता है कि अगर इस लेवल में रहे ये इंडस्ट्री के लिए ठीक है
सेम 2 to 4%
2 to 4% that should be fine. अगर WPI अगर 4% या 5% से बढ़ जाता है तो इंडस्ट्री को भी टेंशन होगा बिकॉज उनका मार्जिन स्क्वीज में आएगा
right.
मैं समझता हूँ 2 to 4 इज ए रीजनेबल
दैट्स ऑलवेज बीन द एक्चुअली यू से इफ यू कैन से सो नाउ टॉकिंग ऑफ गुड्स लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट स्टोरी व्हिच इज अबाउट द एक्सपोर्ट नाउ दिस इज रियली हार्टनिंग 7.4% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर टू $57.48 billion इन जुलाई दिस ईयर इज कम्पेयर टू $53.49 billion last year, in July last year. And this is also very significant, AKB. And also, when we consider the export of certain, you know, merchandise exports and goods like ITs, electronics and things like that, it really is very heartening to see.
7% is certainly better yeah. than the 5% exports growth that you saw in the first quarter. It's a good sign. But I think it is also reflecting the global demand, which is once again a problem area.
Mm-hmm.
There are talks about recession already gripping the US economy.
True.
Japan, there are problems. Europe, there are problems. So therefore, in this situation, to have notched up a growth rate of 7% in exports is certainly a performance that is worth noting.
Incredible.
But this is just 7%, but we need to increase our exports growth to higher levels because what you need to see, what you did not talk about was the imports. The imports are rising at a sharper pace and because of the oil prices having moved up. So what has happened is that your trade deficit for July has gone up at a higher rate than it was in June,
right.
and particularly in July last year. So therefore, we have to take an overall picture. While export 7% growth is good, but your deficit figure is widening further. It's something for the external sector of the economy, which is a key sector, your foreign exchange reserves and everything are concerned. So we need to be mindful of that also.
एक चीज पर आपका ध्यान खींचना चाहूंगी इलेक्ट्रॉनिक गुड एक्सपोर्ट्स में 37.3% का उछाल आया है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि शायद हमारी पीएलआई स्कीम्स है दे आर बेयरिंग फ्रूट जो चाइना प्लस वन की तरफ
मोबाइल फोन में पीएलआई स्कीम ने काम किया है और उसी के लिए ये जो एक्सपोर्ट्स की जो फिगर आप देख रहे हैं वो एप्पल की एक्सपोर्ट्स से ज्यादा जुड़ा हुआ है मैं समझता हूं कि जो एक्सपोर्ट्स जो है वो सिर्फ एक दो सेक्टर में ना होकर जो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जॉब क्रिएटिंग सेक्टर्स जो उसमें भी जाना चाहिए।
टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 11.8% बढ़ा है,
अच्छा साइन है। लेदर में जाना चाहिए, सो ऑटोमोबाइल में जाना चाहिए। सो ये शुरुआती जो आपने पीएलआई की बात कही है एकदम सही बात है कि पीएलआई स्कीम मोबाइल फोन में काम कर रही है, पर बाकी और कोई स्कीम सेक्टर में अभी तक उसने काम अभी दिखाया नहीं है।
चाहिए, अब रुक करते हैं शेयर बाजार का, फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच आज भारतीय शेयर बाजारों में मामूली बढ़त दर्ज हुई। कारोबार की समाप्ति पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.19% की तेजी से 149 अंक बढ़कर 79,105 पर बंद हुआ और निफ्टी 0.02% की बढ़त से 4.75 अंक बढ़कर 24,143 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.41% की गिरावट में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.75% की नुकसान दर्ज हुआ।
The Indian benchmark indices ended marginally higher in the volatile session today. At close, the Sensex was up 149 points or 0.19% at 79.105 and the Nifty was up 4.75 points or 0.02% at 24,143. The BSE mid-cap was down by 0.41% and BSE small-cap slid 0.57%. In the Sensex, 15 out of 30 companies traded in the positive territory, and the top gainers today were TCS at 2.30%, HCL Tech at 2.09%, and Infosys at 1.44%. The major laggards were Ultratech Cement Company at 2.46%, JSW Steel at 1.93%, and Tata Steel at 1.81%. And in the sectoral indices of the BSE, 5 out of the 20 sectors logged gains. The major gainers were information technology at 1.41%, tech at 1.33%, and consumer durables at 0.13%. Conversely, the laggards were metal at 1.51%, commodities at 1.04%, and energy at 0.95%. The overall market breadth of the BSE was negative. Out of 4,036 companies, shares of 1,498 companies advanced, 2,425 declined, and 113 remain unchanged.
रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83.94 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला सूचकांक 0.02% बढ़कर 102.58 पर बंद हुआ। मिस्टर भट्टाचार्य, अभी शेयर बाजार की क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है? जो हमने एक गिरावट देखी है, रिसेशन के जो फियर्स हुए यूएस में, उसके बाद अब क्या आपको लगता है कि स्टेबिलाइज हो रहा है?
नहीं, मुझे लग रहा है कि ये जो वॉलेटिलिटी जो है वो चलती रहेगी, क्योंकि क्लियर साइंस अभी नजर नहीं आ रहे हैं। जो अमेरिकन मार्केट में जो उथल पुथल जो अभी हुआ, अभी भी वो स्टेबिलाइज नहीं किया। जापान का जो करी ट्रेड फेयर जो था वो अभी भी उसका जो डर जो थे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट उन्होंने अचानक बढ़ा दिया, उससे क्या हो कि वो पैसा वापस चला गया है, तो उससे भी काफी अनसर्टेनिटी है, रिसेशन का डर है। और डोमेस्टिक मार्केट में जो अर्निंग सीजन जो है उसका जो सिग्नल्स जो आ रहे हैं वो उतना अच्छा नहीं आ रहा है, इन द सेंस दैट कि पहले जो कॉरपोरेट अर्निंग्स का जो एक्सपेक्टेशन था वो कॉरपोरेट अर्निंग्स की जो एक्सपेक्टेशन उतनी अच्छी नहीं आ रही है। तो मैं समझता हूं कि मार्केट जो इस लेवल में जो है, इस लेवल में ये रेंज बाउंड रहेगा। कोई ज्यादा अनलेस कोई ब्लैक स्वान इवेंट या और कोई मेजर कोई अनाउंसमेंट डेवलपमेंट आ जाए उससे ना, पर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो बीच में जो हिंडनबर्ग की जो एक नई रिपोर्ट आई है उसके बाद भी जो स्टॉक मार्केट ने उतना ज्यादा उस इम्पैक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब जो इम्पैक्ट हो रहा है वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स मार्केट में, यूएस एंड जापान, एंड और आपका जो डोमेस्टिक जो कॉरपोरेट सेक्टर के जो रिजल्ट्स की जो सिग्नल्स जो आ रही हैं उसमें उसके लिए हो रहा है। तो और बजट के जो इम्पैक्ट जो भी जो होना था, जो एलटीसीजी का इम्पैक्ट, वो अब पास्ट में चले गए। तो मैं समझता हूं कि मार्केट इसी वे रेंज बाउंड चलता रहेगा।
बट अभी फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, सो आपको लगता है कि उससे एक नई वो ऊर्जा मिलेगी बाजार को?
जरूर मिल सकती है, फेस्टिवल सीजन है और पर कंज्यूमर गुड्स सेक्टर की अगर इंडिकेशन देखेंगे आप, पर्टिकुलरली जो रूरल मार्केट में जो डेटा आ रही है उसमें ज्यादा डिमांड का सर्ज नहीं आ रहा है, इंडिकेशन नहीं आ रही है। तो अगर फेस्टिवल सीजन में जरूर एक पुश मिलता है, पर वो पुश काफी लिमिटेड रहेगा क्योंकि रूरल डिमांड और इवन अर्बन डिमांड में भी उतनी एक जो तेजी जो होती है वो अभी तक नहीं दिख रही है। पर आपकी बात सही है कि फेस्टिवल के टाइम में थोड़ी बहुत तेजी मिलेगी और उससे जो एफएमसीजी कंपनीज जो हैं, रिटेल कंपनीज जो हैं, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की कंपनीज जो हैं, उसमें काफी उनको फायदा भी हो सकता है।
इट बी ऑन अ लाइटर नोट, यू मेंशन अबाउट द हिंडनबर्ग रिपोर्ट दिस टाइम। सो लास्ट ईयर इन जनवरी वी सॉ व्हाट हैपन, यू नो द टुमल्टस फेज दैट वी सॉ, बट दिस टाइम इट सीम्स द इंडियन इन्वेस्टर्स, द इंडियन मार्केट are mature enough this time. Well, and as they say that you can't hang, you know, a man twice for the same crime. So this time it was a
But this Hindenburg report was not less on the corporates, but more on the regulatory apparatus. So probably the markets discounted many of the suggestions that the market report was making.
Now one point I'd like to, you know, pick up here is about the mid caps and the small caps. They're really kind of bleeding a bit as compared to the
They had really run ahead of their actual valuations. So they become too expensive. And particularly in the small cap segment. So I think they are coming down to ground reality. So there is a reality check happening. So I would say that if you have to be a little cautious of the markets, you should be very mindful of both the mid-cap stocks as well as the small-cap stocks.
So your long-term investors who regularly invest karte hai through SIPs, they have nothing to worry about?
Well, the long-term investors jo hai, through SIP mein, wo mutual fund, mein, unki jo worry jo honi chahiye, wo kis tarah ke jo scheme mein wo invested hain. अगर मान लीजिए वो ऐसी जगह में ऐसी स्कीम में इन्वेस्टेड हैं जो स्कीम अगर एक एक मिक्स्ड स्कीम है डिफरेंट अगर ब्लू चिप कंपनीज की के साथ साथ जो मिड कैप या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के साथ मिली हुई होती हैं तो वो अलग होगा। पर मैं समझता हूं कि जो म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स जो हैं वो उतने ज्यादा एक्सपोज नहीं होंगे जितने कि डायरेक्ट शेयर्स में जो इन्वेस्ट करते हैं
जी। सो अभी रिस्क फैक्टर जब वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो वो भी हाई रहता है। आइए अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। पहले एशियाई बाजार, पांच प्रमुख एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.8% बढ़कर बंद हुआ। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक में 0.7% की बढ़त दर्ज हुई और जापान का निकेई सूचकांक 0.5% की बढ़त में रहा। दूसरी ओर हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.35% के नुकसान में रहा और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.6% की गिरावट दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां बढ़त का रुख था। फ्रांस का कैक 0.6% की तेजी पर था, जर्मनी के डैक्स में 0.3% की वृद्धि थी और लंदन के फुटसी में 0.4% की बढ़त चल रही थी।
मूविंग ऑन टू द यूएस मार्केट्स, द यूएस इंडेक्स क्लोज up on Tuesday and hit a near two-week high after softer producer prices data reinforced bets of an interest rate cut by the Federal Reserve in September. And major U.S. markets were trading in green. The Dow Jones Industrial Average finished up 1.04% and the broad-based S&P 500 gained 1.6%, while the tech-rich Nasdaq Composite Index also advanced 2.4%.
So, काफी हम देख रहे हैं कि यूएस मार्केट में रिवाइवल हो गया है। जो रिसेशन के फियर्स थे, आपको लगता है कि वो बहुत गंभीर है? क्योंकि हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं लेकिन अभी तक दे हैव बीन एबल टू अवॉइड रिसेशन।
फेड ने जिस तरह से उसको मैनेज किया है, उन्होंने काफी एक जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ ले जा रहे हैं ये, और जिस तरह से इन्फ्लेशन के ऊपर जोर लगाया है और कि उनकी जो मैनेजमेंट रही है, मैं समझता हूं कि बहुत ही खूब मैनेजमेंट है, अच्छा मैनेजमेंट है। पर तब भी जो रिसेशन की जो इम्पैक्ट होती है अर्ली, जो अगर माइल्ड रिसेशन भी हो तो उसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो होगा
ऑन
सेंटिमेंट ऑल्सो, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल में इम्पैक्ट होगा। ऑलरेडी उनके यूएस के लिए भी इलेक्शंस आ रहे हैं वहां पे, तो वो भी काफी सेंसिटिव मामला है। पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर यूएस में अगर ऐसी अवस्था चले तो उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में भी होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे वहां से आते हैं। हालांकि अब डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स यहां के भी उतने ही ज्यादा हो गए हैं जितने कि बाहर से विदेश के पैसे आ रहे हैं, पर तब भी यूएस इकोनॉमी में अगर मान लीजिए अगर मंदी आती है, माइल्ड मंदी भी आती है, तो इंडिया के ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा। और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा एक्सपोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट्स यूएस के ऊपर काफी निर्भरशील है। तो अगर यूएस की डिमांड घट जाती है तो मैं समझता हूं कि हमारी जो एक्सपोर्ट जो हमने कही कि जुलाई में 7% की वृद्धि होती, तो उसको मेंटेन करना, सस्टेन करना भी एक चैलेंज हो सकता है।
व्हाट रीजन यू सी एकेबी ऑफ द कंटिन्यूस आउटफ्लो from the Indian markets of the of the foreign institutions? They are kind of almost continuously for the past couple of months we have been seeing the outflow of funds from
it. You know, it's a function of where they should park their money. They suddenly feel that probably going back home, the US, they are not taking the money into some other emerging market. Remember mm-hmm. this.
And how far is VIX kind of?
Yeah, so VIX is very high. It's 42% right now.
और ये जो सितंबर में बहुत ज्यादा एक एक्सपेक्टेशन हो रही है कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट करेगा, कितनी आपको संभावना लगती है? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या बाजारें रिएक्ट करेंगे?
अगर नहीं हुआ, मैं समझता हूं कि जिस तरह से जेरोमी पावेल वो अपनी जो स्टैंस जो है उसको मैनेज करते हैं, अगर मान लीजिए रेट कट नहीं होता है तब भी मैं समझता हूं ऐसी कोई बहुत बड़ी एक हवड़ा तबड़ी नहीं होगी जिससे कि मार्केट में उथल पुथल हो जाएगा। तो इट विल बी अ वेल मैनेज शो इन माय व्यू।
Moving on to crude now. Oil prices rose slightly on Wednesday after an industry report showed that the US crude and gasoline inventories fell as the market watched for a possible widening of the Israel-Gaza war, which may impact the global oil supplies. In the global crude market, the Brent crude was trading 0.43% higher at $81.04 per barrel. And meanwhile, the WTI crude was also up by 0.47%, trading at $78.72 per barrel when reports last came in. Now, talking of the West Asia or the Mideast crisis that we are seeing, where do you see this oil kind of shaping up? In
well, I think the oil market equation have undergone a very significant change. It's no longer a West Asian crude dependent market as far as India is concerned. India's Brent crude is not just dependent on the West Asian crude oil. Almost 40% of our total crude oil imports, we almost import around 89% of our needs. Now 40% of that is coming from Russia. Russian crude oil, the Urals are cheaper. So it is cushioning the Indian economy from a possible external shock on it. So while at a broader sense, this increase in Brent crude oil price going up is a signal that we cannot ignore. And it has it may be challenging for us to manage our external economy, but at the same time I would say that we, as long as our Russian Ural keeps coming, so that impact will be cushioned to a great extent.
और बता दें कि ताजा समाचार मिलने तक भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना 0.31% की बढ़त से 71,020 रुपये प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। 999 गुणवत्ता चांदी का मूल्य 0.47% बढ़कर 81,810 रुपये प्रति किलो पर था। समय समाप्त हो गया है भट्टाचार्य जी, आप आए और मार्केट मंत्रालय के श्रोताओं को इतनी बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच मिस्टर भट्टाचार्य। एंड नाउ बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर headlines once again. The wholesale inflation declines to 2.04% in July from a 16-month high of 3.36% in June. Indian benchmark ends marginally higher. Sensex adds 149 points and Nifty gains 0.02%. And after the report shows that the US crude and gasoline inventories fell, Brent crude was 0.43% higher at $81.04 per barrel. Well, that's it in this edition of Market Mantra. From the entire team here, it's goodbye. Market Mantra.